डीएमके के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की मौत के बाद उनके बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डीएमके स्टालिन को मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। यह जानकारी पार्टी के महासचिव के अंबाजगन ने दी है। उन्होंने बताया कि एमके स्टालिन आम सहमति से द्रमुक के अध्यक्ष चुने गए हैं। आज पार्टी मुख्यालय पर डीएमके के सम्मान परिषद की बैठक हुई, जिसमें उनके राज्याभिषेक का फैसला लिया गया। बैठक से पहले मुख्यालय पहुंचकर स्टालिन के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरा था। डीएमके के दूसरे अध्यक्ष के तौर पर स्टालिन की राह आसान मानी जा रही थी, क्योंकि पार्टी के 65 जिलों के सचिवों ने उनका नाम प्रस्तावित किया था और पद के लिए अकेले उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। अपने पिता के बाद वह पार्टी के दूसरे अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले 39 सालों तक करुणानिधि इस पद पर काबिज थे।
देखिए, एक चीज तो स्टालिन जो है वो करुणानिधि के उतना पॉपुलर नहीं है आज तमिलनाडु में। स्टालिन का पॉपुलैरिटी बहुत लिमिटेड है, तो क्या वो नेचुरल लेगेसी वो उनको करुणानिधि का मिला है? तो नहीं मिला है। करुणानिधि का नेचुरल लेगेसी स्टालिन को नहीं मिला है, बिकॉज स्टालिन को लोग एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक तमिलनाडु में। डीएमके में भी स्टालिन को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत सारे लोग नाखुश है स्टालिन के प्रेसिडेंटशिप से। उनका भाई स्पेशली अलीगिरी, जो एनीवे डीएमके के साथ उनका पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने भी अपना दावा ठोका है। उन्होंने भी बोला है कि भाई मुझे भी जगह चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। सो ओवरऑल जो जिस हिसाब से स्टालिन वो कुर्सी पे बैठा है, वो एक कंफर्टेबल सीट नहीं है उनके लिए। और मुझे ये नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी तरह से या बहुत बेहतरीन तरह से ये लेगेसी को आगे ले जाएगा। तो मेरे हिसाब से डीएमके को आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, ये फॉर श्योर है।
स्टालिन जनवरी 2017 से पिता के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में पिता की मौत के बाद उनका पार्टी सुप्रीमो बनना जरूरी हो गया था। पिता की मौत के बाद एमके स्टालिन और उनके भाई एमके अलागिरी के बीच लगातार जुबानी जंग खूब चली थी। अलागिरी पार्टी में शामिल होने की ताक में है। पूर्व डीएमके मंत्री और करुणानिधि ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से 2014 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एमके स्टालिन को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था। हालांकि स्टालिन के बड़े भाई और द्रमुक से निष्कासित नेता एमके अलागिरी ने धमकी दी थी कि यदि उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया गया तो इसके अंजाम सही नहीं होंगे।
जाहिर सी बात है, अलीगिरी जो है वो डीएमके, जब करुणानिधि जिंदा थे तभी भी उनका खास कुछ उनका अच्छा रिलेशंस नहीं था डीएमके के साथ, तो ये एक बात। दूसरी बात तो यह, वो बना भी सकता है अलग पार्टी, पर मुझे नहीं लगता अलीगिरी एक अलग पार्टी बनाने के कारण कुछ मेजर स्टालिन को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अलीगिरी उतना कोई फेमस लीडर नहीं है, उतना कोई पॉपुलर लीडर नहीं है अलीगिरी तमिलनाडु में। तो अलीगिरी फेमस, अलीगिरी एक अलग पार्टी बनने से कोई फेमस वो कुछ बड़ा नहीं हो सकता। देखिए, एक है तमिलनाडु में कभी भी एक ड्यूअल पावर था, पहले एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि थे, उसके बाद करुणानिधि और जयललिता आई, उसके बाद अब उसका नेक्स्ट ये है। अब टेक्निकली स्पीकिंग दो, उनके भी दो लोग ऊपर आ रहे हैं। एआईडीएमके जो है वो भी वैसा ही टूट गया जैसा डीएमके अभी आगे शायद बिखरने वाला हो। ओके, एआईडीएमके का भी अभी बहुत ओपीएस ईपीएस ओपीएस ऐसा हजार लीडर्स हैं, उनका कोई एक स्ट्रांग लीडर नहीं है। और स्टालिन जो है वो करुणानिधि उतना स्ट्रांग लीडर नहीं है।
द्रमुक के प्रधान सचिव दुराई मुरुगन को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष चुना गया है। वह स्टालिन की जगह लेंगे, जिनके अध्यक्ष बनने के कारण पार्टी कोषाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। करुणानिधि की तबीयत खराब होने की वजह से स्टालिन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सक्तियां स्थानांतरित कर दी गई थी। अलागिरी का दावा है कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद स्टालिन काम चलाऊ है। स्टालिन ने हालांकि अपने भाई की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वह लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
सी, अलागिरी जो है वो कोई बड़ा लीडर नहीं है तमिलनाडु का। अलागिरी कभी भी जब करुणानिधि जिंदा थे तभी भी अलागिरी का कोई अच्छा रिलेशन नहीं था डीएमके के साथ। वो तभी भी प्रॉब्लम क्रिएटर थे, अभी भी प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो अलागिरी मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टालिन को। स्टालिन को ये प्रॉब्लम है कि स्टालिन को जो पॉपुलैरिटी, करुणानिधि का जो पॉपुलैरिटी था, करुणानिधि का जो रिस्पेक्ट था तमिलनाडु में, वो रिस्पेक्ट स्टालिन को नहीं है। स्टालिन ने वो इनहेरिट नहीं किया है। ओके, स्टालिन का जो एक इमेज है वो उतना पॉजिटिव जितना करुणानिधि का इमेज था वो उतना पॉजिटिव नहीं है। तीसरी बात करुणानिधि एक ग्राउंड से बड़े हुए लीडर थे, उन्होंने बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं, जो ऑन ग्राउंड मूवमेंट्स हैं, वो मूवमेंट से उन लोग वो बड़े हुए और इतने बड़े लीडर बने। ओके, स्टालिन को तो लीडरशिप ऐसे मतलब उसको गिफ्ट में मिला था, इनहेरिटेड किया था वो लीडर। सो वो जो ऑन ग्राउंड उसको उनका जो कनेक्ट है, जो करुणानिधि का कनेक्ट है, वो इनको नहीं है। सो प्राइमरली मुझे लगता है कि स्टालिन को जो है जो करुणानिधि का जो वो एंजॉय करते थे, जो पावर वो एंजॉय करते थे, जो पॉपुलैरिटी वो एंजॉय करते थे, वो स्टालिन एंजॉय नहीं करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, सी तमिलनाडु में कभी भी दो तरफा एक मैच हुआ है कभी भी? पहले एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि थे, उसके बाद करुणानिधि और सुश्री जयललिता थी, उसके बाद यू हैड अभी जो थर्ड जनरेशन है। ओके, अब AIDMK जो है, AIDMK ऑलमोस्ट बिखर गया है, जयललिता की पार्टी जो है वो कंप्लीटली बिखर गई है। ओके, उधर अभी आज यू हैव APS, OPS वगैरह 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 100 लीडर्स है, मुझे नहीं लगता वो पार्टी और एक 5 या 6 साल लास्ट करेगी। अच्छा, यहाँ DMK है, वो DMK, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो DMK ख़त्म हुआ है, पर DMK जाहिर सी बात है वीकन बहुत हुआ है। ओके, लेकिन अब ये उभर के आ रहा है कि स्टालिन जो है एज अ नेचुरल लेगेसी, नेचुरल इनहेरिटेंस, स्टालिन उभर के आ रहा है DMK से, और AIDMK जो है उसको खत्म करके एक नया पार्टी जो TTV दिनकरन ने चालू किया है, AMMK बोल के उनका पार्टी है शायद, AMMK जो है वो TTV दिनकरन एक पॉपुलर लीडर करके आ रहा है, और जो नेचुरल लेगेसी नहीं बोलूंगा लेकिन जो 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 जयललिता का लेगेसी है, मुझे लगता है वो TTV दिनकरन ने अपने उन्होंने ले लिया है। सो नाउ आई सी टू यंग लीडर्स हु हैव जस्ट इनहेरिटेड पावर, उन्होंने कुछ नहीं किया है पावर के लिए बट जस्ट इनहेरिट किया, ऐसे दो लीडर्स जो है वो उभर के आएंगे। अब ये देखना है कि स्टालिन कितना आता है और TTV दिनकरन कितना आता है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मुझे नहीं लगता कि कमल हसन या रजनीकांत वगैरह ये सीरियस पॉलिटिक्स में अभी भी है, वो अभी भी सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। तो जो वो रजनीकांत स्पेशली वो इन आउट कर रहे हैं कि वो एक दो हफ्ता बहुत सारे आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीच वगैरह वगैरह देंगे और फिर 2 महीने इज आउट, वो गायब है। कमल हासन जो है उतना पॉपुलर नहीं है जितना लोग समझते हैं उनको, और दूसरी बात, वो बहुत एलीट क्लास को वो केटर करता है, वो कॉमन मासेस को वो केटर नहीं करता है। तो तीसरी बात, मुझे नहीं लगता है वो भी सीरियस है अपने पॉलिटिक्स के बारे में। सो मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ तमिलनाडु इज 2 लीडर्स, 1 इज स्टालिन, 1 इज TTV दिनकरन। स्टालिन जो है वो करुणानिधि को रिप्रेजेंट करता है लिटरली, और TTV दिनकरन जो है वो जयललिता को रिप्रेजेंट करेगा। कितना पावरफुल है, कितना उन लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कितना उनको इनहेरिटेंस मिला है, कितना लोग उनको पसंद करेंगे, ये आगे अपने को देखना।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।